నిత్యనరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మదం వందే శుకతాతం తపోనిధి. కల్ బాత్ చలి థీ కి కరందం కా బేటా అవీక్షిత థా. उस अवीक्षित ने एक स्वयंवर में जाकर एक कन्या को स्वीकार किया तो सब राजा लोगों ने उसको घेर लिया. वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और इधर उसके पिता को पता चला तो वो सेना लेकर के वहां पहुंच गया. अब आगे बताते हैं कि करंदन ने पुत्र के साथ सहयोग करने के लिए, शत्रुओं का वध करने के लिए पूर्ण रूप से सेना को आज्ञा दे दी और वे उस राजा विशाल जिसके कन्या का विवाह हो रहा था उसकी सेना के साथ और वहां आए हुए जितने राजा लोग थे उनके साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ. करंदम तो वास्तव में बड़े चमत्कारी पुरुष थे, अतः उन्होंने अपने चमत्कार से सब सेना को परास्त कर दिया और उनका जो बेटा वहां बंधन में रखा गया था उसको मुक्त करवा दिया. राजा विशाल ने अपनी हार मान ली और वो राजा अपनी कन्या लेकर करमधन के पास उपस्थित हुए और उनसे कहा कि मेरी कन्या अवीक्षित के साथ मैं सुपुर्द करता हूं. अब यह अवीक्षित का और उसकी कन्या का बड़ा धर्मयुक्त संवाद होता है. अवीक्षित ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस युवती को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसी युवती के देखते देखते मैं युद्ध में परास्त हो गया. अब इसका विवाह किसी और के साथ कर दो या यह भी किसी और पुरुष का वरण कर ले क्योंकि मेरा पराक्रम, मेरी कीर्ति इसकी आंखों के सामने खंडित हो गई है. यदि मैं कभी भी युद्ध करूंगा तो संभवतः यह मुझे बार बार ताना मार सकती है. इसके लिए भी बड़ा दुख होगा और मेरे लिए भी बड़ा दुख होगा. जितना अपमान अब हो चुका सो हो चुका, आगे मैं अपमान सहन नहीं कर सकता. पुरुष होता है उसमें बल होता है इसलिए वो स्वतंत्र होता है और स्त्रियां हैं वो अबला होती हैं. अबला होने के कारण से उनको कई बातों में परतंत्र रहना उचित होता है. इसके देखते देखते राजाओं ने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तो इसी के साथ मैं जिंदगी कैसे निकालूंगा. तो उस बेटी के पिता विशाल ने कहा कि बेटी, जो पति तुमको ले जाने के लिए सब राजाओं के बीच में उपस्थित हुए थे उनकी बात तुमने सुन ली है। यदि वे तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो तुम किसी और को पति बना लो, या हम जिसको तुम्हें देवे उसको तुम स्वीकार कर लो। अब वो कन्या बोलती है पिता से, पिताजी ये राजकुमार व्यर्थ में ही अपने आप में अपने को कलंकित मानते हैं। इतने राजाओं ने मिलकर के एक राजकुमार को परास्त किया, क्या इनका बल और पराक्रम मुझसे छिपा हुआ है? वास्तव में इनकी पराजय नहीं हुई है, बहुतों के सामने ये अकेले सिंह के समान घुस गए और डटकर के सामना किया। इनका कितना विलक्षण पराक्रम है, ये वीरता और पराक्रम से युक्त धर्म युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध तो ऐसी चीज है कि इसमें किसी की जय और किसी की पराजय होती है, पराजय का हमको दुख है ही नहीं। हमें तो इस बात का गौरव है कि इन्होंने कितना पराक्रम दिखाया है। मैं इनकी वीरता, इनकी धीरता और इनके पराक्रम और दूसरे सद्गुणों पर मोहित हूं, अतः अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए इनके पिता करंधम से प्रार्थना कीजिए कि वे अपने पुत्र राजकुमार अभीक्षित को समझाएं और मुझे स्वीकार करें। जो स्त्री अपने मन से किसी को एक बार पति के रूप में स्वीकार कर चुकी होती है वो सदा के लिए उसका पति होता है। राजा विशाल ने कहा, राजकुमार मेरी पुत्री ने कैसी धर्म की बात कही है, मैं इसके मुख से ये बात कहलाने के लिए ही दूसरे पति को चुनने के लिए बोला था। ये मैं भी मानता हूं कि तुम्हारे जैसा वीर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे पराक्रम की समता कहीं नहीं देखी जा सकती। तुम मेरी कन्या को स्वीकार करो और मेरे कुल को पवित्र करो। राजकुमार के पिता राजा करंधम ने भी समझाते हुए कहा, बेटा तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार कर लो, इस सुंदरी का तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है, इसलिए इसे स्वीकार करो। राजकुमार ने कहा, पिताजी मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देख करके विशाल ने व्याकुल होकर के कहा, कन्या ये राजकुमार तुम मानने वाले नहीं है, तुम अपनी ओर से इनके प्रति मन हटा लो और दूसरे को तुम पति बना लो। तुम्हारे यहां स्वयंवर में बहुत से राजकुमार आए हुए हैं, इसलिए राजकुमारों की कोई कमी नहीं है। कन्या बोली, पिताजी आप मुझसे एक बात को कितनी बार कहलवाएंगे, ये मुझे स्वीकार नहीं करते, ये इनकी इच्छा है, पर मैंने इनको स्वीकार कर लिया है सो कर ही लिया है। यदि ये मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं तपस्या करने जाऊंगी, कुछ भी हो मैं पति बनाऊंगी तो इन्हीं को ही बनाऊंगी, इस जन्म में इसके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकेगा। तपस्या की बात सुनी तो राजा विशाल भी चुप हो गए माने लड़के के पिता और लड़के का पिता भी चुप हो गया। दोनों ने मन में विचार किया कि कितना उच्च भाव है। दोनों अपने अपने नगर को लौट गए। अवीक्षित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों के द्वारा बहुत समझाया, कई दृष्टांत बताए, परंतु अवीक्षित के अभी कोई बात समझ में नहीं आई। इधर वो राजकुमारी अपने पिता से, भाई बंधुओं से आज्ञा लेकर अकेली वन में चली गई और दृढ़ वैराग्य के साथ निराहार रहकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद उसके शरीर में पीड़ा हुई, अत्यंत दुबली हो गई, शरीर की नाड़ी नाड़ी दिखने लगी, उसका उत्साह मंद पड़ गया, वो मरणासन्न सी हो गई। जब उस राजकुमारी ने यह विचार कर लिया कि शरीर जाए तो भले ही जाए, तो शरीर की भी परवाह नहीं की, उसी समय देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने आकर कहा, राजकुमारी सुनो, मैं देवताओं का दूत हूं, मैं देवताओं का दूत हूं, देवताओं ने तुम्हारे पास जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम सुनो। राजकुमारी, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, न जाने कितने कितने जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर में सबसे बड़ा काम मनुष्य को इसका सदुपयोग करना है। तुम ये क्या करने जा रही हो? तपस्या करो, पर निराहार होकर क्यों? निराहार रह करके तुम तपस्या करोगी तो तपस्या तो तुम समझती हो कि मैं बहुत अच्छी कर रही हूं, पर निराहार रहना उचित नहीं है। इसको भोजन दो, आहार दो, अकारण इसका परित्याग मत करो। सुनो, तुम्हारा पुत्र होगा वो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा, 7 द्वीप उसके अधीन रहेंगे, कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, वह 4 वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके सबका पालन करेगा, चोर लुटेरे म्लेच दुष्ट सबका वध करेगा, उत्तम दक्षिणाओं से युक्त नाना प्रकार का यज्ञ करेगा, उसके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञों का 6,000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा रहा, उसके शरीर पर हार चंदन शोभा दे रहे थे। राजकन्या ने बड़ी कोमल वाणी में कहा, हे देवदूत, तुम्हारे स्वरूप से ऐसा लगता है कि तुम देवदूत हो, सचमुच तुम स्वर्ग से आए हो, तुमने मेरी होने वाले पुत्र के विषय में बात कही लेकिन पति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे मिलेगा? मैंने पिता के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अवीक्षित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा, और वे अवीक्षित मेरे पिता के, अपने पिता के और स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, अब बताओ मेरा पुत्र ऐसे कैसे होगा? देवदूत ने कहा, कल्याणी, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा, परंतु निराहार रहकर तपस्या मत करो। ये अधर्म पूर्वक शरीर का त्याग करना पाप है। तुम्हारी जैसी धर्मात्मा और वीरात्मा को जन्म देने वाली माता के लिए उचित नहीं है। अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या से तो मन की शुद्धि होती है, तन की भी शुद्धि होती है, पर निराहार तो कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। निराहार मत रहो। देवदूत तो जैसा आया था वैसा लौट गया, और वो राजकुमारी प्रतिदिन आहार के द्वारा अब अपने शरीर को देवताओं की आज्ञा मानकर पुष्ट करने लगी। इधर अवीक्षित की माता को जब इन सब बातों के बारे में पता चला, तो एक दिन अपने पुत्र अवीक्षित को बुला करके कहा कि बेटा, तुमने ऐसी श्रेष्ठ कन्या जिसके अंदर इतना विलक्षण भाव था, उसका तुमने त्याग किया, ये अच्छा नहीं है। केवल इसलिए कि मेरा यश, मेरा पराक्रम, इसके सामने मैं पराजित हो गया, ये क्या समझेगी? ऐसे मौकों पर उत्तम कन्या का त्याग करना न्याय नहीं है। मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी, उसका नाम है किमिच्छक व्रत। ये बहुत कठिन होता है, फिर भी मैं करूंगी। यदि तुम बल पराक्रम दिखाओगे तब तो वो साध्य हो जाएगा। तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं उस यज्ञ के अनुष्ठान में आपकी रक्षा करूंगा, तब मैं उसको प्रारंभ करूं। तुम्हारा विचार है सो बताओ। अवीक्षित ने कहा कि मां, यदि पिताजी ने आपको आज्ञा दी है और आप एक बहुत बड़ी तपस्या करने जा रहे हैं, तो आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, उसमें मैं आपकी पूरी सहायता और रक्षा करूंगा। तदनंतर उस वीरा ने, महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की, निधिपाल गणी की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया। इधर महाराज करंदम जब एकांत में घर में बैठे हुए थे, उस समय बड़े बड़े नीति शास्त्र के विशारद मंत्रियों ने उनके पास आकर कहा कि महाराज, इस पृथ्वी का शासन करते करते वह आपकी अवस्था वृद्ध हो गई, आपके एक ही तो पुत्र है और उसने भी किसी प्रकार से श्रेष्ठ कन्या को छोड़ दिया, अब आपका ये वंश लुप्त तो हो जाएगा, पितरों को पिंड और पानी देने वाला नहीं रहेगा, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, अर्थात वह विवाह करने के लिए राजी हो जाए। इसी समय राजा करंदम के कानों में एक आवाज आई। वो आवाज रानी वीरा की थी, महारानी वीरा, करंदम की पत्नी। वो अपने पुरोहित याचकों से कह रही थी, सॉरी, वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे। वीरा के जो पुरोहित थे वो याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है, बताओ कौन सा साधन किया जाए। महाराज, करंदम की रानी किमिच्छक व्रत का अनुष्ठान करती है, अतः जिसको जो इच्छा हो वो पूर्ण हो जाएगी। आओ क्या चाहता है कौन। पुरोहित की बात सुनकर राजकुमार अवीक्षित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिच्छक व्रत कर रही है, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो वो बताओ। सब याचकों सुन लो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, इस किमिच्छक व्रत के अनुष्ठान के अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, मैं उसे अवश्य दूंगा। अपने बेटे के मुख से ये बात सुनकर राजा करंदम तुरंत आए और बोले, अवीक्षित, मैं अभी तुम्हारा पिता होकर नहीं, मैं एक याचक बनकर आया हूं, मेरी मांगी हुई वस्तु दे, क्योंकि तुमने देने की प्रतिज्ञा की है। अवीक्षित बोले, पिताजी आपको मैं देऊं, ऐसी क्या बात है, बताओ क्या करना है। मेरा कोई काम दुष्कर हो, साध्य हो, अत्यंत दुस्साध्य हो, कुछ भी कहो, आप मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा ने कहा कि याचक के सामने तुमने फिर प्रतिज्ञा की है, अतः तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, विचार करो, जो मैं तुमसे दान लूंगा वो तुमको दान देना पड़ेगा। उसने कहा, पिताजी आपकी तो आज्ञा ही बहुत है, आप याचक बनकर बात क्यों कहते हो। राजा ने कहा, तो कुछ भी समझो, मेरी बात सुनो, सबको इच्छा अनुसार दान दे रहे हो ना कि हां, तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ, मुझे पोता चाहिए। अवीक्षित बोले, महाराज मैं आपका एक ही तो पुत्र हूं और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है, मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊं। राजा ने कहा, छोड़ो ये बात, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा के लिए तुम क्या बोलते हो, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करना पड़ेगा, अपनी माता के इच्छा अनुसार मुझे पौत्र का मुख दिखाना पड़ेगा। अवीक्षित ने अनेक प्रकार से अपने पिता को समझाया, महाराज मैंने ये वचन याचकों को दिया है, आप तो मेरे पिता हैं, आप याचक थोड़े ही हैं। पिता ने कहा कि बेटा मैं उस समय तुम्हारे पास पिता होकर नहीं आया था, याचक बनकर आया था, और मेरे सामने तुमने मुझे भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है। उसने उत्तर दिया, पिताजी मैं तो किमिच्छक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया, खैर अब निर्लज्ज होकर फिर विवाह करूंगा, पहले तो स्त्री के सामने परास्त हुआ और राजाओं ने मुझे पकड़ करके युद्ध में हराया, गिरा दिया, और फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा, ये बड़ा दुष्कर कर्म है, तथा भी क्या करूं, मैं सत्य के बंधन में बंधा हूं, अब आपकी जो आज्ञा है वो आज्ञा पूरी करूंगा। इतनी बात होने के बाद एक दिन राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। और उस वन में बहुत दूर चले गए, अभी वो शिकार खेलेंगे, कल आगे बात चलेगी।